नमस्कार भारत, आज है 17 जुलाई दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में गौरक्षकों पर दिया कड़ा बयान। आज से शुरू हो रहे सत्र में विपक्ष की सरकार को घेरने की पूरी तैयारी।
ये लिंचिंग जो हो रहा है दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, और प्राइवेट आर्मियों का जो सिलसिला जो देश के अंदर बढ़ रहा, इसके बारे में गंभीरता से चर्चा की जरूरत है।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होगी वोटिंग। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का जीतना लगभग तय। कांग्रेस ने कहा ये विचारधारा की लड़ाई।
ये जीत और हार का प्रश्न नहीं है, सिद्धांत का, विचार का, देश का और समाज का प्रश्न है।
सुनिएगा इतिहास के कथित रिवर्स इंजीनियरिंग पर पाकिस्तान से वसीतुल्ला खान का ब्लॉग। होगा साप्ताहिक स्तंभ खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। आज भारत में देश में 14वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और आज ही शुरू होने वाला है दिल्ली में 16वीं संसद का चौथा मॉनसून सत्र, जहां सत्तारूढ़ दल एनडीए ने दलित नेता रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने दलित नेता मीरा कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसने कथित इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अफगानिस्तान सीमा से सटे उत्तर पश्चिम के इलाके में एक बड़ा अभियान शुरू किया है। पाकिस्तानी सेना के एक प्रवक्ता के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने अफगानिस्तान के भीतर अपनी पकड़ बना ली है और उन्हें अपना प्रभाव बढ़ाने से रोकने की जरूरत है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने कहा,
खैबर का बॉर्डर जो राजगाल के साथ अफगानिस्तान के साथ लगता है, पिछले चंद महीनों की डेवलपमेंट अगर आप फॉलो करते रहे हों तो दाएश की मौजूदगी वहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो ये ऑपरेशन करना इसलिए भी ज़रूरी था कि दाएश जो वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है, उसका पाकिस्तान के इलाके में राजगाल वैली के थ्रू उसका इन्फ्लुएंस जो है उसको हम ख़त्म कर सकें।
ये थे सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला में सरकार के संविधान को दोबारा लिखने की योजना के विरोध में आयोजित अनौपचारिक जनमत संग्रह के दौरान हुई हिंसा से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है। राजधानी काराकास के बाहरी इलाके में एक मतदान केंद्र के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। इससे पहले 100 से ज्यादा देशों में बड़ी संख्या में वेनेजुएला के निवासियों ने जनमत संग्रह में मतदान किया है। इस जनमत संग्रह को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बेमतलब कहा है, जबकि विपक्षी नेता इसे गणतंत्र की आवाज कह रहे हैं। संसद में विपक्ष के नेता जोश गुवेरा ने कहा, मुझे लगता है कि वेनेजुएला के लोग अभूतपूर्व रूप से देश की सड़कों पर उतर आए हैं और गणतंत्र की मांग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार संविधान को दोबारा लिखने की योजना पर फिर से विचार करेगी और वेनेजुएला को लोग स्वतंत्र और गणतांत्रिक रूप से मतदान कर पाएंगे और अपना नेता खुद चुन पाएंगे। संसद में विपक्ष के नेता जोश गुवेरा के शब्द। ईरान में एक अमरीकी नागरिक को जासूसी के आरोप में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इस व्यक्ति की पहचान चीनी अमरीकी नागरिक वांग शियू के रूप में की गई है। 37 साल के वांग शियू अमरीका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में शोध कर रहे थे। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्हें इतिहास से संबंधित एक प्रोजेक्ट के लिए ईरान के पुराने दस्तावेजों के अध्ययन की इजाजत दी गई थी, लेकिन वो अमरीका के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। इधर अमरीका ने मांग की है कि वांग शियू समेत अन्य अमरीकी और विदेशी नागरिक जिन्हें ईरान ने झूठे आरोपों में पकड़ा है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। नाइजीरिया में पुलिस का कहना है कि देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद तेल के कारखाने में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्रॉस रिवर में मौजूद इस तेल कारखाने में विस्फोट किन कारणों से हुआ, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। स्थानीय खबरों के अनुसार इस विस्फोट का कारण गैरकानूनी रूप से तेल चुराने की कोशिश हो सकता है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और यहाँ पाइपलाइनों और टैंकर से तेल लूटने के कारण विस्फोट होने की घटनाएं आम हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के छोटे भाई हुसैन फेरदून को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी जमानत की राशि चुकाने में असमर्थ रहे हैं, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन पर क्या आरोप लगाए जाएंगे, इस पर अभी अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। कल दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के साथ दूरियां पाटने की कोशिश की। गोरक्षा के मुद्दे पर लंबे अरसे से विपक्ष की आलोचना का सामना कर रहे नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकारों को इसके लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक जीवन में शुचिता और राष्ट्रपति चुनाव का भी जिक्र किया, लेकिन विपक्ष देश के माहौल, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और सुरक्षा को लेकर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। सुनिए हरिता कांडपाल की रिपोर्ट।
गौरक्षा के नाम पर हत्याओं के प्रति नरम रवैया रखने का आरोप केंद्र सरकार पर लगता रहा है। आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष इसे मुद्दा बनाए इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कह दिया कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने इस बैठक के बारे में ये बताया।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, ऐसे अपराध कर रहे हैं, उसके बारे में कठोर कार्यवाही करें।
इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में अपील की कि सभी दल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर साथ आएं। इसे कहीं न कहीं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर इशारा माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार,
जो सार्वजनिक जीवन में है, इसे राजनेताओं के ऊपर, उन सबके साथ में साथ के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, इसको ठीक करने के लिए सभी पार्टी मिलकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उन्होंने आह्वान दिया।
विपक्ष के एजेंडा में गोरक्षा के नाम पर हिंसा के अलावा कश्मीर में तनाव, चीन के साथ विवाद, दार्जिलिंग में बिगड़ते हालात और किसानों की बदहाली जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा,
जो हालात बहुत ही खराब हो रहे हैं, सरकार ने जो तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद करी है, बातचीत के तमाम रास्ते बंद किए हैं, तो हमने इनको कहा है कि वेंटिलेटर तो खुला रखना चाहिए, वरना तो इतनी सफोकेशन हो जाएगी। जब सब दरवाजे खिड़कियां बंद रखोगे तो सफोकेशन में तो आदमी मर जाएगा।
वहीं वामपंथी सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा,
कई बार गौरक्षक के हमले हैं, ये लिंचिंग जो हो रहा है दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, और कई इस तरीके की प्राइवेट आर्मियों का जो सिलसिला जो देश के अंदर बढ़ रहा है, इसके बारे में गंभीरता से चर्चा की जरूरत है।
17 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार बैंकों में खराब लोन संबंधित विधेयक के अलावा कई अन्य विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव भी आज ही होना है। इसी सत्र में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 5 अगस्त को होगा। ये बात अलग है कि सर्वदलीय बैठक में सभी दल संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार दिखे, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र में कई मुद्दों के बादल गरजेंगे। हरिता कांडपाल, बीबीसी।
विपक्ष के तेवर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि यह सत्र सत्ताधारी गठबंधन के लिए आसान रहेगा। हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने बात की वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से और पूछा कि संसद में कामकाज को लेकर कैसी संभावना नजर आ रही है।
देखिए, जो पिछले सप्ताह में सरकार की तरफ से चेष्टा हुई है वो सारा माहौल को ठंडा करना, चीन को लेके एकदम बवाल था, चीन बहुत ही आक्रामक रवैया उठा रहा था, और अगर विपक्षी पार्टियां इसको सरकार को आड़े हाथ लेती, जो कि उनका मूड था, तो ये चीन के लिए एक प्रोपेगेंडा का इश्यू होता, उनके पेपर्स लिखते इसके बारे में। तो वैसे ही प्रॉब्लम हो रही है डोकलम को लेके, किस तरह से वहां डिफ्यूज किया जाए। तो अपोजिशन पार्टीज ने ये मान लिया है कि सरकार के को एम्बेरस नहीं करेंगी और उनके साथ कदम मिला के, जहां तक चाइना का सवाल है, जहां तक कश्मीर का सवाल है, मैं नहीं मानती कि वो इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, और अपोजिशन का ये राइट बनता है, हक बनता है कि वो उठाएं ऐसे मुद्दे। और जो गौरक्षा को लेके एक बहुत ही गंभीर चिंता पूरे देश में रही है कि किस तरह से लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है और जो मार रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा, ये लोगों के मन में बात आ गई है, तो उसको लेके, और इसकी निंदा दुनिया भर में भी हुई है, सवाल उठा है एडिटोरियल्स में, इंटरनेशनल एडिटोरियल्स में, तो प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बार बार बात उठे उससे पहले ये कह दिया कि ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।
कदम तो स्वागत योग्य है, लेकिन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोला, और उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव जो कि इसी सत्र में होने वाला है, उन्होंने कहा कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है। जो
जी वो बिल्कुल जो उन्होंने कहा है वो अपनी पोजिशनिंग विपक्ष की सेट कर दी है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि रामनाथ कोविंद जीतने वाले हैं और भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, और असली जो सस्पेंस है वो ये नहीं कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन, लेकिन ये सस्पेंस है कि किस कितने बहुमत से जीतेंगे। और जो पक्ष कह रहा है कि हम तो 75% ऑफ द वोट बैंक डलवाएंगे वोटें इनके लिए, तो उनके लिए तो वो लड़ाई है। जहाँ तक वाइस प्रेसिडेंट का सवाल है, वहाँ भी गोपाल गांधी बहुत ही अच्छा कैंडिडेट विपक्ष पार्टियों ने चुना है, 18 पार्टियों का सहमत है, जनता दल यू ने भी अपना समर्थन कर दिया है जो कि प्रेसिडेंट को लेके नहीं किया है, वो अलग हो गए हैं विपक्ष की पार्टियों से, तो वहाँ भी जीतने के आसार नहीं है, क्योंकि 700 कुछ जो वोटें हैं जो सिर्फ पार्लियामेंट की होती हैं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, उसमें से 500 के करीब तो ये क्लेम ही कर रहे हैं पक्ष की साइड के हमारी तरफ आएंगी।
लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए भी देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों को एकजुट रखना उसके लिए एक चुनौती साबित होगा।
बहुत बड़ी चुनौती है विपक्षी पार्टियों को एक साथ रखना, एक साथ लाना पहले, फिर उनको रखना, फिर उनको तैयार करना 2019 के लिए, वो किस तरह से होगा, किस तरह से। और मुझे लगता है वन ऑन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे फाइट्स होनी पड़ेंगी, एनडीए वर्सेस एक ऑपोजिशन पार्टी, अगर ये नहीं होगा तो बिल्कुल रिमोट चांस भी नहीं है ये कुछ कर सके।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। आज देश के 14वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्ता पक्ष ने एक मत बनाने की बात कही थी, लेकिन बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद को एनडीए का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बिफरे विपक्ष ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को उम्मीदवार घोषित कर इसे कथित तौर पर विचारधारा की लड़ाई बना दिया है। हालांकि वोटों के समीकरण के अनुसार रामनाथ कोविंद का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव पर हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से बात की।
ये जीत और हार का प्रश्न नहीं है, सिद्धांत का, विचार का, देश का और समाज का प्रश्न है। जब भारत के सामने एक बड़ा संकट है, दो विचारधाराओं, दो सोच का सीधा टकराव है, एक सोच जो भारत का स्वरूप है, जो देश के निर्माताओं ने दिया है और स्वाधीनता संग्राम के महानायकों ने दिया है, एक ऐसा भारत जो प्राचीन संस्कृति है, जो बहुधर्मी है, बहुभाषी है, जहाँ लोगों के अपने रीति रिवाज हैं और लोग आपस में एक दूसरे के सम्मान के साथ रहते हैं, जिस समाज में सहनशीलता है, दूसरी तरफ एक विचारधारा है जो हिंसा की है, घृणा की है, टकराव की है, जो केवल जिनका बाहुल्य है देश में, जिस धर्म का, जिस सोच का, जिस भाषा का, उन्हीं की वहाँ पे वर्चस्व हो, ये एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। ये चुनाव केवल आंकड़ों से नहीं होते, राजनीति में विचारधारा और विचारधारा पर प्रतिबद्ध रहना आवश्यक होता है।
संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, इस पर कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए कौन कौन से मुद्दे मुख्य रहने वाले हैं?
बहुत विषय हैं। देश के अंदर बढ़ती अराजकता है, हिंसा है, कानून के दायरे के बाहर लोगों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों पर सीधा प्रहार हो रहा है, गौ रक्षक के नाम पे, एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पे, दूसरी चीजों पर, जहां एक ऐसी सोच भारत में थोपी जा रही है कि कौन क्या कहेगा दूसरे लोग तय करेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, इससे पूरी दुनिया में भारत का चेहरा दागदार हुआ। और उसके साथ साथ नौजवानों में बढ़ता हुआ असंतोष है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। तीसरा है कृषि में, जो हमारे गांवों में किसान को अपने कीमत नहीं मिल रही अपनी फसल की। चौथा भारत की सुरक्षा का, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, हमारी दोनों सीमाओं पर तनाव है, टकराव की स्थिति बनी है, उत्तरी सीमा जो चीन के साथ है और पश्चिमी। तो ये सारे विषय हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए संसद में।
ये थे वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा।
75 वर्षों से आपके साथ।
बीबीसी हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन में खींचतान का दौर जारी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर बढ़ते दबाव के बीच कल राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की बैठकों का दौर भी जारी रहा। हालांकि इन बैठकों से कोई हल निकलता नजर नहीं आया। हालांकि माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद महागठबंधन के भविष्य को लेकर कोई फैसला हो सकता है। सुनिए नीरज सहाय की रिपोर्ट।
बिहार में महागठबंधन के दो घटक राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने जहां यूपीए की प्रत्याशी मीरा कुमार के पक्ष में अपने सभी विधायकों के वोट सुनिश्चित करने के लिए विधायक दल की बैठक रविवार को की, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत सुनिश्चित करने के लिए विधायकों को प्रेरित और प्रशिक्षित किया। राजद विधायकों की बैठक में पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद प्रशिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने जदयू का नाम लिए बिना विधायकों को सावधान किया कि यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब महागठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भाजपा के उम्मीदवार का साथ दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी विधायक का वोट खराब हुआ तो अगली बार उसका टिकट खराब कर दिया जाएगा। जाहिर है लालू प्रसाद राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं। राजद और कांग्रेस विधायकों की संयुक्त बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की बेटी मीरा कुमार के पक्ष में पूरी एकजुटता के साथ मतदान करेगी।
कि हमारा एक एक वोट जो है बिहार की बेटी मीरा कुमार जी को जाएगा। किया तो हम लोगों की कोशिश होगी कि मीरा कुमार जी जीत के आए। इसमें भी लालू प्रसाद जी ने खुद बोर्ड लगा हुआ था उसमें बताया है, हम जैसे जो पहली बार विधायक जो चुन करके आए हैं उन लोगों को साफ हो जाना चाहिए कि वोटिंग देने का तरीका क्या होता है।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन अटूट है।
महागठबंधन अटूट है। महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को अब बिहार में दाल किसी कीमत पर गलने नहीं दिया जाएगा।
महागठबंधन के दो घटक दलों के इस दावे की पहली परीक्षा सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के साथ शुरू होगी। मतदान के बाद फोकस फिर तेजस्वी प्रसाद यादव के इस्तीफा नहीं देने और जनता दल यूनाइटेड के बिंदुवार जवाब मांगने पर अड़ने से उत्पन्न गतिरोध पर होगा। अब देखना यह है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एकजुटता परीक्षा के दूसरे पेपर का हल क्या निकालते हैं। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
दिल्ली से निकलने वाले अखबारों की समीक्षा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं मानसी। मानसी, क्या कुछ खास है आज के अखबारों में?
राष्ट्रपति चुनाव होने हैं तो हर अखबार में इससे जुड़ी खबर पहले पन्ने पर है। एक दूसरी खबर जो पहले पन्ने पर है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का भाषण, जिसमें उन्होंने गौरक्षा के नाम पर हो रही हत्याओं को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के सर पर डाल दी थी। कल उन्होंने कहा था कि गौरक्षा के नाम पर हो रही सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनके अलावा जो अन्य खबरें आज अखबारों में हैं वो मैं श्रोताओं को बता दूं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीमा पर चीन की दखलंदाजी को लेकर केंद्र सरकार से के समक्ष चिंता जताई थी और अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कम से कम 5 बार फोन पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में ममता बनर्जी ने चीन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण यादव की दया याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका पिछले महीने डाली थी और इस याचिका का फैसला अब पाक सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा लेंगे। और भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। जनसत्ता में छपी एक खबर के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की अखिल भारतीय बैठक पहली बार जम्मू कश्मीर में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में देश के सामने मौजूद मुख्य चुनौतियों पर विचार किया जाएगा। अखबार का कहना है कि अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बीच ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में चरमपंथ, आंतरिक सुरक्षा और कश्मीर की हालात पर चर्चा होगी। और अखबार में छपी एक और खबर आपको बता दूं, गौमूत्र और गाय से जुड़े पदार्थ और उनसे होने वाले लाभ पर वैज्ञानिक रूप से रिसर्च करने के लिए सरकार ने एक 19 सदस्यों का एक पैनल बनाया है और इसमें आरएसएस और वीएचपी के 3 सदस्यों को शामिल किया गया है।
अखबारों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। कई बार हमें यह सुनने को मिल जाता है कि सरकारें इतिहास का पुनर्लेखन करवा रही हैं। ऐसे आरोप केवल भारत में ही नहीं लगते बल्कि पाकिस्तान में भी इतिहास लेखन को लेकर आलोचकों की ऐसी ही राय रही है और इसी मुद्दे पर पाकिस्तान से वसतुल्ला खान ने भेजी है अपनी डायरी। आइए सुनते हैं।
मुझे याद है कि प्राइमरी स्कूल में जो पुस्तक पढ़ाई जाती थी उसमें प्राचीन हिंदुस्तान भी था, जिसमें गौतम बुद्ध, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य और तक्षशिला बसते थे। मोहम्मद बिन कासिम भी था और लॉर्ड क्लाइव भी। मगर आज इसी प्राइमरी स्कूल में जो पुस्तक पढ़ाई जाती है वो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है और दिल्ली की तुर्क सल्तनत, मुग़ल पीरियड, 1857 की जंग आज़ादी, सर सैद, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और इकबाल से होती मोहम्मद अली जिन्ना पे ख़त्म हो जाती है। मैं पिछले वर्ष मोहनजोदड़ो गया और म्यूज़ियम डायरेक्टर से कहा, मुझे वो बर्तन और मूर्तियाँ दिखाइए जो खुदाई के बाद निकले हैं। कहने लगा, आपको हिंदू पीरियड की चीज़ें देखनी हैं या बुद्धिस्ट पीरियड की? मेरे हाथ से चाय का कप छूट गया। भाई, मोहनजोदड़ो का हिंदू या बुद्धिस्ट पीरियड से क्या लेना देना? कहने लगा, हम तो जी उन्हें भी हिंदू ही समझते हैं। यानी जब सरकारें इतिहास के साथ ऐतिहासिक बलात्कार की कोशिश करती हैं तो फिर वैसी नस्ल परवान चढ़ती है, जिसका एक नमूना मोहनजोदड़ो म्यूज़ियम का ये डायरेक्टर भी है। मगर ये देख के खुशी होती है कि हमारे यहाँ ही नहीं, पड़ोस में भी इतिहास के साथ रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। मई 2014 में हिंदुस्तान के मुसलमान और ईसाई और उनकी बिल्डिंगें वगैरह सब विदेशी हो गए। जब मोदी जी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब आर्या और बाद में तुर्क और मुग़ल मध्य एशिया के मैदानों से भारत आए, मगर 3 वर्ष पहले पता चला कि आर्या जाति के लोग दक्कन, तक्षशिला और मगध में तब से आबाद हैं जब से भारत जन्मा है, और स्वास्तिका का निशान मध्य एशिया से नहीं बल्कि भारत से मध्य एशिया गया और वहां से जर्मनी पहुंच गया। मध्य एशिया से बस मुसलमान आए और अंग्रेज़ समंदर पार से आए, लिहाजा जो भारतवासी मुसलमान या ईसाई हुए वो भी विदेशी ठहरे और उनकी संस्कृति और इमारतें भी विदेशी ठहरी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या, मथुरा और बनारस की प्राचीन संस्कृति की तरक्की और रक्षा के लिए 20 अरब रुपए से अधिक का बजट रखा है, मगर ताजमहल और फतेहपुर सीकरी टाइप विदेशी बिल्डिंगों के लिए यूपी के नए बजट में कद्दू भी नहीं। ये बजट योगी जी ने लखनऊ के कालीदास मार्ग पे अंग्रेज़ों के बनाए चीफ मिनिस्टर हाउस में मंजूर किया और फिर उसे चर्चा के लिए 1928 में गवर्नर यूपी सर हार्ट कोर्ट बटलर के हाथों बनी विधानसभा बिल्डिंग में यूपी असम्बली के सामने रख दिया और वहां से बजट का ये बिल 200 वर्ष पुराने राजभवन में बैठे गवर्नर के हस्ताक्षेप के लिए भेज दिया गया। ये राजभवन कोठी इलाही बख्श के नाम से नवाब आसिफुद्दौला के खर्चे से अंग्रेज़ रेजिडेंट मेजर जनरल क्लार्ड मार्टिन के लिए बनवाया गया था। मुझे इंतज़ार रहेगा जब अगले महीने भारत की 17वीं सालगिरह पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुग़लों के लाल किले पर से पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की माला में पिरोए रंगारंग मोती दर्शाएंगे। क्या योगी जी भी उस समय वहां बैठेंगे कि नहीं?
ये थी पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी। और अब वक्त है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी का। रॉजर फेडरर ने कैसे रचा विंबलडन में इतिहास और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेटरों की कैसी है तैयारी, सुना रहे हैं आदेश कुमार गुप्त।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत विंबलडन से, जहां कल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने क्रोएशिया के मारिन चिलिच को हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पूरी रिपोर्ट के साथ विंबलडन से ही बीबीसी संवाददाता पवन सिंह अतुल।
रॉजर फेडरर 8 बार विंबलडन जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। क्रोएशिया के मारिन चिलिच को हराकर फेडरर ने 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। तीसरी वरीयता प्राप्त फेडरर ने मारिन चिलिच को 6-3, 6-1, 6-4 से हराया। मैच के दौरान मारिन चिलिच बाएं पैर के छालों से परेशान रहे। दूसरे सेट के दौरान वो भावुक उठे और उनकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। उधर 35 वर्षीय फेडरर ने 1 घंटे 41 मिनट में साल 2012 के बाद अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। वो ओपन एरा के शुरुआत के बाद ऑल इंग्लैंड क्लब में पुरुष सिंगल्स खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। मैच के बाद अपनी इस उपलब्धि पर फेडरर ने कहा,
Yes, it is very special. Wimbledon was always my
हाँ, ये बहुत ही स्पेशल जीत है। विंबलडन हमेशा से ही मेरा चहेता टूर्नामेंट रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे हीरो इसी मैदान पर टेनिस खेले हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं बेहतर खिलाड़ी बना हूँ, तो यहाँ इतिहास गढ़ना एक बहुत बड़ी बात है। रोजर फेडरर का शब्द। उधर बाएं पैर में छालों की वजह से मैरिन चिलिच का खेल प्रभावित रहा। मैच के बाद उनसे पूछा गया कि क्या उनकी आंखों में आंसू दर्द की वजह से थे या इसलिए कि वो अपनी पूरी काबिलियत के साथ टेनिस नहीं खेल पा रहे थे। चिलिच ने इस सवाल का जवाब कुछ यूं दिया,
It was just emotionally that I knew, you know, on such a big day that I'm unable to
जब मुझे समझ आया कि इतने अहम दिन में मैं अपनी बेहतरीन टेनिस नहीं खेल पा रहा हूं, तो मैं भावुक उठा। तो उन आंसुओं में दर्द और भावुकता दोनों का मिश्रण था, क्योंकि मुझे मालूम था कि फाइनल में पहुंचने में मैंने कितनी कड़ी मेहनत की है। मैरिन चिलिच के शब्द। शीर्ष वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के जेमी मरे और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीत लिया है। मरे और हिंगिस की जोड़ी ने डिफेंडिंग चैंपियन ब्रिटेन की हेदर वॉटसन और फिनलैंड के हेनरी कॉन्टिनन की जोड़ी को 6-4, 6-4 से मात दी।
और अब समीक्षा। महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दमखम की, जिसने मिताली राज की कप्तानी में खेलते हुए करो या मरो वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 108 रन से हराया। लेकिन मैदान के बाहर बेहद संघर्षों का सामना करने के बाद इस टीम को ये मुकाम हासिल हुआ है। क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
तकलीफों से महिला की क्रिकेट गुजरी है इंडिया में, क्योंकि एक जमाना तो ऐसा था जब वो उनके पास पैसे नहीं थे अपने किट खरीदने के लिए, मैचेस ऑर्गेनाइज करने के लिए खुद पैसे खर्चते थे और ऑफिस पे दरवाजे खटखटाते थे कि कुछ ना कुछ मदद मिल जाए। अब वो बीसीसीआई में आ गई है, अब उनका एक दर्जा अच्छा बन गया है।
अब सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम का सामना 20 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से होगा, उसी ऑस्ट्रेलिया से जिसने राउंड 6 में भारत को 8 विकेट से करारी मात दी थी। उस मैच में पूनम राउत ने 106 रनों की शतकीय पारी भी खेली। खुद मिताली राज ने भी 69 रन बनाए और टीम ने 226 रनों जैसा अच्छा खासा स्कोर भी खड़ा किया। मिताली राज के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में एक रिकॉर्ड भी जुड़ा जब वो सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई, लेकिन हार की कसक ने उनके दिल को तोड़ दिया।
आई थिंक दैट सिंस आई हैड अ लॉन्ग करियर,
मेरा मानना है कि ये लंबे करियर का एक हिस्सा है। मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि मेरे बैट से मेरे देश के लिए रन निकले, लेकिन मैं आज के परिणाम को देखते हुए खुश नहीं हूँ जिस तरह से मैंने रन बनाए। मैं दोबारा कहती हूँ कि 220 रन का स्कोर काफी था, हमें इसका बचाव करना चाहिए था या हमें अधिक विकेट लेने चाहिए थे। अब जिस टीम की कप्तान ऐसी हो तो फिर टीम का हौसला तो बढ़ना ही था। और उसके बाद आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड को धराशायी कर टीम शान से सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन अब सेमीफाइनल से आगे क्या? अयाज मेमन मानते हैं कि इससे आगे की कामयाबी महिला टीम के लिए कुछ और बंद दरवाजे खोल सकती है।
सेमीफाइनल भी जीतते हैं तो एक बड़ा बूस्ट मिलेगा विमेंस क्रिकेट को इंडिया में, ऑलरेडी जो है वो मिल गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये अपने हक से मांग सकते हैं बीसीसीआई कि भाई हमें एक अच्छा आइटनरी प्लान करें और मौके दें कि हम खेल सकें।
स्मृति मंधाना, मिताली राज, दीप्ति शर्मा, झूलन गोस्वामी और पूनम राउत का नाम अब सब पहचानने लगे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से पार पाकर फाइनल तक पहुंचेगी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। आज भारत में 14वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। जहां सत्तारूढ़ दल एनडीए ने रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने मीरा कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उन्होंने कथित इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अफगानिस्तान सीमा से सटे उत्तर पश्चिम के इलाके में एक बड़ा अभियान शुरू किया है। वेनेजुएला में सरकार के संविधान को दोबारा लिखने की कोशिश के विरोध में आयोजित अनौपचारिक जनमत संग्रह के दौरान हुई हिंसा में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ईरान में एक अमरीकी नागरिक को जासूसी के आरोप में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। नाइजीरिया में पुलिस का कहना है कि देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद तेल के एक कारखाने में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की इस सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया देवाशीष कुमार ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, लेकिन देश विदेश की तमाम खबरें और उनके विश्लेषण के लिए आपके साथ है हमारी वेबसाइट bbchindi.com। नमस्कार।